हिंदी दलित आत्मकथा का आरंभ। दलित आत्मकथा ने भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट विधा के रूप में स्थान बनाया है। आत्मकथाएं विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में लिखी जाती है, किंतु आत्मकथा को साहित्यिक विधा के रूप में विशिष्ट पहचान मिली मराठी में रची गई दलित आत्मकथाओं से। 7वें दशक में मराठी भाषा में यह विधा विकसित हुई और अब तक अनेक दलित आत्मकथाएं प्रकाशित होकर चर्चित हो चुकी हैं और साथ ही अनेक आत्मकथाएं साहित्यिक पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हो चुकी हैं। मराठी भाषा के दलित आत्मकथाओं से प्रेरणा पाकर अन्य भारतीय भाषाओं में भी दलित आत्मकथा लेखन का आरंभ व विकास हुआ है। इसी कड़ी में हिंदी में दलित आत्मकथा लेखन के आरंभ को देखा जा सकता है। हिंदी में करीब 2 दशक पहले भगवान दास की सामाजिक आत्मकथा मैं भंगी हूँ प्रकाशित हुई थी। उस समय दलित आत्मकथा ने वह प्रतिष्ठा हासिल न की थी जो आज उसने की है। दूसरे मैं भंगी हूँ वास्तव में व्यक्तिगत आत्मकथा न होकर पूरी जाति की सामाजिक आत्मकथा है। इसलिए दलित साहित्य के संदर्भ में यह कृति अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी सृजनात्मक दलित आत्मकथा के दायरे में नहीं आती। सृजनात्मक दलित आत्मकथा लेखन में जिन समकालीन दलित लेखकों ने प्रयास किए हैं उनमें मोहनदास नमिश्राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कौशल्या बैसंत्री, शिवराज सिंह बेचैन, कुसुम वियोगी, सूरजपाल चौहान आदि प्रमुख हैं। इनमें से पुस्तक रूप में सबसे पहले मोहनदास नमिश्राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे वाणी प्रकाशन से 1995 में प्रकाशित हुई और छपते ही खूब चर्चित होकर 1996 में ही इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन 1997 में प्रकाशित हुई और इसके प्रकाशन से न सिर्फ हिंदी में बल्कि पंजाबी भाषा में भी खूब सनसनी फैली, क्योंकि बहुत जल्द ही इसका पंजाबी अनुवाद जूठ शीर्षक से छप गया और बाद में जूठ का पंजाबी में ही नाट्य रूपांतरण में पंजाब में अनेक जगहों पर अत्यंत सफल नाट्य प्रस्तुतियां हुईं। कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा दोहरा अभिशाप भी 1999 में छपकर चर्चित हुई। शिवराज सिंह बेचैन, सूरजपाल चौहान, कुसुम वियोगी व अन्य दलित लेखकों की आत्मकथाओं के कुछ अंश पत्र पत्रिकाओं में छपकर चर्चित हुए हैं तथा उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इन लेखकों की आत्मकथाएं भी पुस्तकाकार रूप में सामने आएंगे। प्रसिद्ध दलित लेखक व अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद की आत्मकथा भी तैयार है, किंतु पद पर रहते हुए उन्होंने इसे छपवाया नहीं। संभव है अब यह आत्मकथा भी छपकर सामने आए, इसके कुछ अंश छपे भी हैं। मोहनदास नमिश्राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे का दूसरा भाग भी छप चुका है। सो हिंदी में दलित आत्मकथा लेखन का आरंभ काफी परिपक्व रूप में हुआ है और संभवतः भविष्य में इस विधा में और परिपक्व लेखन सामने आएगा। यहाँ हिंदी की 2 आरंभिक आत्मकथाओं अपने अपने पिंजरे और जूठन पर विचार किया जाएगा। हिंदी साहित्य के संदर्भ में अभी यह विवाद चल रहा है कि दलित साहित्य को एक साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो या नहीं। हालांकि बावजूद इस विवाद के मान्यता तो प्राप्त हो ही चुकी है। दूसरी यह बात भी अभी विचाराधीन है कि दलित साहित्य के दायरे में जो छप रहा है उसकी साहित्यिक गुणवत्ता कितनी है और कितनी नहीं। हिंदी में दलित साहित्य आज इतनी मात्रा में लिखा जा रहा है कि उसके कुछ अंशों में निश्चय ही साहित्यिक कलात्मकता का स्तर काफी ऊंचा है। जो दलित लेखक अपने लेखन द्वारा साहित्यिक गुणवत्ता कसौटी पर भी खड़े उतरते हैं उनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का स्थान सर्वोपरि है। मोहनदास नमिश्राय, कौशल्या बैसंत्री, दयानंद बटोही, माता प्रसाद आदि लेखक भी अपनी विभिन्न सृजनात्मक व आलोचनात्मक कृतियों में साहित्यिक गुणवत्ता के स्तर को प्राप्त करते हैं। यद्यपि दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र या उसकी आलोचना के मानदंडों से संबंधित विवाद भी है। दलित साहित्यकार साहित्य के पारंपरिक मानदंडों को ठुकराते हुए उसके मूल्यांकन के लिए अलग तरह की विशिष्ट विश्व दृष्टि की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के बरला गांव में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में हुआ था। उनकी आत्मकथा जूठन के प्रकाशन से पहले ही एक सशक्त कवि और कहानीकार के रूप में उनकी पहचान स्थापित हो चुकी थी। सदियों का संताप व बस बहुत हो चुका कविता संग्रहों द्वारा वे दलित आक्रोश को काव्यात्मक रूप में अभिव्यक्त कर चुके हैं। सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ विचारधारात्मक स्तर पर भी वाल्मीकि सक्रिय रहे हैं और प्रज्ञा साहित्य के दलित विशेषांक के संपादन के अतिरिक्त अनेक पत्र पत्रिकाओं में दलित साहित्य की अवधारणाओं व उसके विभिन्न पक्षों पर लेख लिखते रहे हैं, अनेक विवादों में भी अपना पक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं। अपनी इस साहित्यिक और विचारधारात्मक सक्रियता के द्वारा वे अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत भी हुए हैं। उनकी आत्मकथा जूठन के कुछ अंश पहली बार राजकिशोर द्वारा संपादित पुस्तक हरिजन से दलित में छप कर सामने आए। कुछ अंश संभवतः हंस में भी छपे और आत्मकथा के पुस्तकाकार रूप में छपने से पहले ही पर्याप्त चर्चित हो गए। यह उम्मीद भी बन गई कि एक अच्छे दलित आत्मकथा हिंदी में छप कर सामने आएगी। इसी बीच मोहनदास ने मिश्रा की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे पहले छप गई और वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन 1997 में छपकर सामने आई। अपनी इस आत्मकथा के सृजन प्रक्रिया के संबंध में स्वयं लेखक का कथन है, इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, अपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यांत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उधेड़ते हुए कई बार लगा कितना दुखदायी है यह सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है। वास्तव में जब भी कोई दलित लेखक सचेत और सजग रूप में अपने जीवन के अनुभवों को आत्मकथा या किसी अन्य साहित्यिक विधा का रूप देगा तो वाल्मीकि की ही तरह के अनुभवों से उसे गुजरना ही पड़ेगा। और जिन कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है वह वे लोग हैं जिन्होंने बचपन में चांदी के चम्मच से दूध पिया है, जिन्होंने जिंदगी को अपने नज़दीक से देखा ही नहीं। जैसे कड़वे अनुभवों से वाल्मीकि गुजरे हैं वे इतने यथार्थ और वास्तविक हैं कि उन्हीं से जूठन दिल दहला देने वाले दलित लेखक की सच्ची कहानी बन गई है। कुछ 150 पृष्ठों में वाल्मीकि ने अपने जीवन के करीब 40-45 वर्षों की कथा कही है, लेकिन इस कहने की शैली इतनी मार्मिक और संवेदनशील है कि पाठक के मर्म को सहज ही स्पर्श कर लेती है। लेखक की वर्णन क्षमता में अद्भुत आकर्षण है। यद्यपि यह सृजनात्मकता ज्यादातर जीवन के कुरूप और क्रूर पक्षों का ही उद्घाटन करती है। जूठन का आरंभ भी बरला गांव के डब्बों वाली जोहड़ी के वर्णन से शुरू होता है और यह वर्णन ऐसा है कि कई संभ्रांत पाठक पाठिकाएं इस वर्णन से विदग सकते हैं। गांव के चूहड़ों के घर जहां बनाए बसाए गए हैं उसके पीछे गांव भर का खुला शौचालय है जिसमें गांव भर की औरतें नित्य कर्म से खुले में निवृत्त होती हैं। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी, दुर्गंध ऐसी कि मिनट भर में सांस घुट जाए। इस प्रतिष्ठित हिंदी लेखक के बचपन के दिनों का यह पर्यावरण है जिसके बारे में खुद वाल्मीकि ने लिखा है। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था करने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। असल में भारत में ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के समर्थक और उसे परिचालित करने वाली सत्तासीन शक्तियां ऐसी ढीठ या शातिर हैं कि उन्हें ऐसी जगहों पर कभी कोई रख नहीं सकेगा। अलबत्ता उनके पास ऐसे माहौल को न्यायोचित ठहराने के लिए मनुस्मृति जैसे विचारधारात्मक आधार हैं जिसके बल पर वे शूद्रों की इस दशा को उनके पिछले कर्मों का दंड मानकर उसे उचित ही ठहराते हैं। हाँ, जो लोग सचमुच इन परिस्थितियों से अनजान हैं उनका मत बदलने के लिए तो जूठन जैसी आत्मकथाएं भी पर्याप्त है, क्योंकि जो लोग संवेदनशील हैं जिनमें जरा सी भी मानवीयता बची है वे ऐसी आत्मकथाओं को सामाजिक यथार्थ के प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में ग्रहण करेंगे और यदि वे किसी सामाजिक सत्ता में होंगे तो ऐसी स्थितियों में परिवर्तन के लिए आग्रहशील होने का प्रयास करेंगे। बरला गांव त्यागी जमींदारों की सामाजिक सत्ता द्वारा परिचालित गांव है जिसमें दलितों चूहड़े चमारों के हिस्से में सिवाय अपमान और मेहनत मजदूरी के और कुछ नहीं है। इसी गांव में रहते हुए वाल्मीकि के पिता ने वाल्मीकि को स्कूल में दाखिल कराने की हिम्मत की। उसी स्कूल में चमार और झीवर जाति का भी एक लड़का दाखिल था। इन सब बच्चों को स्कूल शिक्षा के दौरान किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ा उसका जूठन में तो मार्मिक वर्णन है ही। सैमुअल ने इसके पंजाबी नाट्य रूपांतर में मंच पर जो उसकी नाटकीय प्रस्तुति की उसमें तो वह और भी तीव्र और तीक्ष्ण रूप में उभर आया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन में गांव के पूरे जीवन की स्थितियों पर ही प्रकाश डालते चलते हैं। न सिर्फ स्कूल में दलित बच्चों से यातनादायी व्यवहार होता है, घरों में भी उच्च जाति के जमींदार इन दलित वर्णों से बेगार करवाने के बाद भी क्या सलूक करते हैं उसका भी यथार्थ चित्रण इस आत्मकथा में उकेरा गया है। जैसे जूठन शीर्षक इस आत्मकथा को कैसे मिला उसका संदर्भ भी बड़े मार्मिक रूप से चित्रित है। बड़े घर के ब्याह शादियों में दलितों द्वारा बेगार किए जाने के बाद उन्हें समुचित खाना भी न दिया जाता, बल्कि बारातियों घरातियों के पत्तलों में छोड़ी जूठन को काम करने वाले दलित परिवार को दे दिया जाता और दलित बेचारे जूठन को भी चटकारे लेकर खाते थे। लेकिन वाल्मीकि की माँ अपमानजनक परिस्थितियों में दी गई जूठन को जमींदार के सामने फेंक आती है और यह घर तो जूठन के रिवाज से खुद को मुक्त कर लेता है। उत्तर प्रदेश के गांव में दलितों का हर स्तर पर अपमान होता है। दलित लड़की ब्याहने आए दामाद को उच्च जाति के घरों में घुमाकर उसके लिए शगुन आदि मांगा जाता है और बड़े अपमानजनक ढंग से उच्च जाति की पुरुष स्त्रियां उसकी झोली में कुछ सिक्का आदि फेंक देते हैं। वाल्मीकि के बचपन से ही संवेदनशील व साथ की शिक्षा से सजग मन में इस अमानवीय प्रथा को भी अपने परिवार में अंत करवाया और फिर पूरे गांव से भी। इस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस आत्मकथा में केवल परिस्थितियों की क्रूरता का यथार्थ चित्रण भर ही नहीं है, सामाजिक परिवर्तन की सुख बुगाहट भी है। भले ही अत्यंत अपमानजनक परिस्थितियां झेलकर ही वाल्मीकि या उसके जैसे लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी, लेकिन इसी शिक्षा ने व इसके कारण मिली नौकरी ने उन्हें इन अत्यंत क्रूर परिस्थितियों से कम व्यक्तिगत स्तर पर तो मुक्त कर ही दिया है। वाल्मीकि ने गांव के ऐसे त्यागी चौधरियों का चित्रण भी किया है जो बचपन में उसे चूहड़ा चूहड़े का कहकर अपमानित करते थे, उसे छूने से घृणा करते थे। वही वाल्मीकि के नौकरी में अच्छी स्थिति में पहुंचने पर उसके घर भी गए व उनके हाथ का खाना भी खाया। लेकिन ऐसी घटनाओं का वर्णन वाल्मीकि ने न तो बदले की कटु भावना से नए चटकारे लेकर किया, बल्कि इस ढंग से किया है कि पाठक को यह महसूस हो कि सामाजिक परिस्थिति ही ऐसी अस्पृश्यता के अमानवीय व्यवहार का कारण है और यदि ये परिस्थितियां बदल जाएं तो अस्पृश्यता का व्यवहार भी बदल जाता है। वाल्मीकि की आत्मकथा में शैली के स्तर पर उपन्यासिकता जैसा रस है। जीवन के कई व्यक्तिगत मार्मिक प्रसंगों का चित्रण वाल्मीकि ने बड़े संवेदनशील ढंग से किया है। अंबरपुर में नौकरी करते समय ब्राह्मण कुलकर्णी परिवार में वाल्मीकि को मिलने वाले प्यार, उनकी बेटी सविता का वाल्मीकि के प्रति आकर्षण, लेकिन वाल्मीकि द्वारा अपनी जाति बताए जाने पर इस संबंध के टूटने की कथा को वाल्मीकि ने करुणा का पुट नहीं दिया है। उसे सामाजिक वास्तविकता की ऐसी घटना के रूप में चित्रित किया है जिसमें जाति व्यवस्था के उस क्रूर पक्ष को उघाड़ा है जिसके कारण मासूम दिल टूटते हैं। वाल्मीकि ने बाद में अपने पारिवारिक परिवेश में अपने विवाह व नौकरी में रहते हुए अपनी जीवन परिस्थितियों को बदलने की कथा सहज रूप में अभिव्यक्त की है। वाल्मीकि उपनाम रखने पर उस पर परिवार और मित्रों में बहस को वाल्मीकि ने जरूरत से अधिक विस्तार दिया है और उसमें उतनी सहजता भी नहीं है जितनी उनकी पूरी आत्मकथा में है। वाल्मीकि उपनाम एक अन्य स्तर पर ही भी आपत्ति का कारण बन सकता था, क्योंकि वाल्मीकि अपनी रामायण में कहीं भी ब्राह्मणवादी वर्चस्ववादी संस्कृति को चुनौती नहीं देते, बल्कि वाल्मीकि अपनी रचना में हैं भी उसी वर्चस्ववादी संस्कृति के प्रतिनिधि, न कि दलित जागरण और शक्ति के प्रतीक। इस संदर्भ में वाल्मीकि आधुनिक दलित अस्मिता की पहचान के प्रतीक तो नहीं बन सकते। ओम प्रकाश ने वाल्मीकि उपनाम से तो उन्हें इसे प्रतीक के रूप में ग्रहण किया है, लेकिन कोई भी नाम जिस भी रूप में प्रचलित हो जाए वही उसका प्रतीक बन जाता है। वाल्मीकि भले ही वर्चस्ववादी संस्कृति के प्रतिनिधि रहे हों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन द्वारा वर्चस्ववादी जातिवादी वर्णवादी संस्कृति को सशक्त सांस्कृतिक चुनौती देते हैं। उनकी यह रचना मराठी दलित आत्मकथाओं के साहित्यिक स्तर के बराबर की रचना है। इसके सकारात्मक पक्षों में वाल्मीकि द्वारा अपने पीड़ा व जीवन में मिले अपमान की कटुता को पीकर उस गरल से मानवीयता रूपी अमृत का सृजन जूठन द्वारा किया गया है। जूठन में उच्च जाति द्वारा मिले दंश व पीड़ा अपमान के बावजूद उसके प्रति जातिगत घृणा या विद्वेष नहीं, वरन पूरी जातिवादी व्यवस्था के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टि है। जूठन की सबसे बड़ी शक्ति समाज से जातिवाद के जहर को मिटाने पर बल देने में है, न कि व्यक्तिगत पीड़ा का प्रचार करने में। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा, जिसे दलितोन्मुखी आत्मकथा कहा गया है, 1995 में प्रकाशित हुई। यह हिंदी के पहले से प्रतिष्ठित लेखक पत्रकार मोहनदास रमेश राय की अपने अपने पिंजरे शीर्षक से छपी आत्मकथा है। मेरठ में जन्मे मोहनदास रमेश राय पत्रकारिता व अध्यापन में कुछ वर्ष बिताने के बाद स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगे। कविता कहानी के साथ साथ कई नाटकों का लेखन भी उन्होंने किया। विचारात्मक व आलोचनात्मक लेखन भी वे करते हैं तथा इतिहास के क्षेत्र में विशेषतः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दलित संग्रामियों पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। वह हाल में उनकी स्वाधीनता संग्राम के दलित क्रांतिकारी शीर्षक पुस्तक भी छपी है। रेडियो टीवी के लिए भी वे लेखन करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर वांग्मय संपादन से भी वे जुड़े रहे हैं। अपने अपने पिंजरे की भूमिका में महीप सिंह ने इस रचना को आत्मकथा के बजाय आत्मवृत्त कहा है। अपने अपने पिंजरे का आरंभ मोहनदास रमेश राय ने अपनी पत्रकारिता की शैली में अपने शहर मेरठ के विस्तृत विवरण से किया है। इसमें 1857 के पहले संग्राम, पंडित नेहरू की इम्पाला गाड़ी में कई बार शहर में आने, शाहनवाज खां के इसी शहर के होने, डॉक्टर अम्बेडकर का शहर का दौरा करने आदि घटनाओं का भी जिक्र है। फिल्म अभिनेता भारत भूषण और मंदाकिनी के इस शहर से होने का भी, शहर की छावनी और शहर के दो हिस्सों में बटे होने व शहर में साइकिलें ज़्यादा होने का भी जिक्र है। यहाँ तक कि शहर में रंडियों, लौंडेबाजों और भणों की उपस्थिति को भी लेखक ने ध्यान दिलाया है और इस तथ्य की ओर भी कि शहर में मुसलमानों की संख्या अधिक है, यद्यपि मुसलमानों की संख्या से रंडियों आदि को जोड़ना कुछ विचित्र लगता है। शहर को मिथिहाल में रावण की ससुराल भी कहा गया है। शहर की औरतों की ओर भी लेखक का काफ़ी ध्यान है और इस बात को रेखांकित करना भी लेखक नहीं भूलता कि इनमें कई उसकी प्रेमिकाएं व वेश्याएं थीं। शहर के विस्तृत वर्णन के बाद मोहनदास रमेश राय व्यक्तिगत जीवन का विवरण देना शुरू करते हैं, जिसमें बचपन में ही माँ के न रहने, पिता की दूसरी शादी करने व खुद को ताई माँ व बा द्वारा पाले पोसे जाने का विवरण है। बा बस्ती में जूते सिलने का काम करते थे और पिता सरकारी नौकरी, जो पक्के घर में रहते थे। बस्ती में जमा जाति के करीब 80 घर होने का जिक्र है। ये सभी लोग मेहनत मजदूरी करते थे। बस्ती के तीन तरफ मुस्लिम बस्तियां होने व उनके भी मजदूरी करने का जिक्र है। भैंसे और गाय का मांस आम रूप में खाए जाने का भी जिक्र है। मोहनदास रमेश राय अपनी आत्मकथा में बाह्य पर्यावरण का विवरण देते समय कई बार इतिहास और संस्कृति पर भी टिप्पणी करते चलते हैं। जैसे दलित संबंधी यह कथन, हम हारे हुए लोग हैं जिन्हें आर्यों ने जीत कर हाशिए पर डाल दिया था, या हमारी गिनती गुलामों में की जाने लगी, वे मालिक बन बैठे, हमारी औरतें उनकी रखेल बनी, हम उनकी औरतों से कटते गए, परिवार बिखरते गए। कैसा निर्मम था वह इतिहास और संस्कृति जिसे हम लंबे समय से ओढ़ते बिछाते आए थे। ये टिप्पणियां कुछ ज्यादा तीखे और शब्दों के असावधान चयन का संकेत करती हैं। लेखक ने बस्ती के अपने परिवार व कुछ अन्य परिवारों की जीवन दशा का ब्यौरा दिया है। इस विवरण में बीच बीच में मार्मिक टिप्पणियां भी हैं, जैसे हर घर में कोई न कोई दर्द, टीस, बेचैनी थी जो मन की उदास दीवारों के बीच से जाने अनजाने फूट कर बाहर आ जाती। ऐसे समय पर औरतें खुद अपनी व्यथा कथा कहती और दूसरों को सुनती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र मंदिरों में पुजारी करीब 40 साल पहले जय श्री राम बोलते थे, जिसे 1990 के बाद पूरे देश में आतंक फैलाने के लिए नारे के रूप में कुछ गुटों द्वारा इस्तेमाल किया गया और इस नारे को सत्ता की सीढ़ी भी बनाया गया। यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति के पारंपरिक अभिवादन प्रतीक को नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल आदि की जगह इसे अभिवादन प्रतीक व जय हिंद की जगह राष्ट्रीय अभिवादन प्रतीक तक बनाने के प्रयास किए गए। यह अलग प्रसंग है। मोहनदास रमेश राय ने भी प्रारंभिक शिक्षा व स्कूलों के वातावरण का चित्रण किया है। मोहनदास रमेश राय को यह सब यातनाएं तो स्कूलों में नहीं भुगतनी पड़ी जो वाल्मीकि को भुगतनी पड़ी, लेकिन फिर भी अपमानजनक वातावरण में तो यहाँ भी था। उनके स्कूलों को चमारे का स्कूल कहा जाता था। स्कूल में कभी पूरे अध्यापक न रहते थे। स्कूल में न नल था, न टॉयलेट और न ही खेल का मैदान, बिजली भी नहीं। मास्टर बच्चों को उल्टे सीधे नामों से बुलाते थे। रमेश राय ने अपने घर परिवार के लोगों की कमजोरियों का भी खुलकर वर्णन किया है, जैसे नई या सौतेली माँ का व्यवहार, पिता के शराब पीने और सट्टा खेलने की आदत आदि का दलितों को राजनीतिक अवस्था में कुछ हासिल हिस्सा मिलने पर भी उनकी सामाजिक व्यवस्था में कोई अंतर न पड़ता था, इसका वर्णन लेखक ने अपने बा के म्यूनिसिपल कमेटी का सदस्य चुने जाने के प्रसंग में किया है। अभी भी उच्च जाति के लोग उसके साथ उतना ही अपमानजनक व्यवहार करते थे। मोहनदास रमेश राय ने 6 दिसंबर 1956 के दिन का विशेष वर्णन किया है, जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर का निधन हुआ था और दलित घरों में चूल्हे नहीं जले थे। लेखक ने मेरठ में अक्सर सांप्रदायिक दंगे होने के प्रतीक के रूप में एक दंगे का चित्रण किया है। जब लेखक करीब 12 वर्ष का था और पूरा एक सप्ताह स्कूल में छुट्टी रही, कर्फ्यू लगा था, लेखक ने लोगों के परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों को मुस्लिम पड़ोसी बत्तों द्वारा कई इस बात से चित्रित किया है। आए मौन की अम्मी, हमारा तुम्हारा भला कर्फ्यू से क्या वास्ता, हम तो पड़ोसी हैं, खुदा गारत करे दंगे फसाद करने वालों को। वास्तव में यह भावना हर सामान्य हिंदू व मुसलमान की भावना है। लेखक ने पढ़े लिखों लोगों में गहरी सांप्रदायिक विद्वेषपूर्ण भावनाओं का भी विवरण दिया है। लेखक ने दलित बस्ती में बरसात के दिनों की अत्यंत कष्टकर जीवन स्थितियों का भी विस्तृत विवरण किया है, जब कई घर गिर जाते हैं, सांप बिच्छू आदि विषैले जानवर घरों में पानी के साथ बहते हैं। लेखक ने पूरी आत्मकथा में विवरणात्मक दृश्यों को संजोया है। गंगा के मेले का भी विवरण है। बहिन की ससुराल के गांव निठारी की यात्रा द्वारा गांव का माहौल भी चित्रित किया गया है। यहां पर जाति द्वेष इतना है कि उच्च जाति के लोग प्यासे दलित बच्चों को पानी तक नहीं पिलाते। इस प्रसंग में लेखक द्वारा जोहड़ के गंदे पानी पीने का वर्णन है। व्यक्तिगत प्रसंगों में लेखक ने एक भाई की नपुंसकता, बहन के ससुराल और पारिवारिक प्रसंगों का भी विस्तृत वर्णन किया है। लेखक के 5वीं कक्षा पास करने के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिले का जिक्र है, जहां सभी सवर्ण अध्यापक दुर्व्यवहार करते हैं, केवल मुस्लिम अध्यापक इलिहास सीधा और सरल है। पढ़ाई के दौरान एक व्यक्ति द्वारा लेखक से जबरदस्ती चप्पल ठीक करवाने, जिसमें उसे चोट भी लगी, का चित्र भी लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक ने अपने प्रथम प्रेम प्रसंग का भी चित्र खींचा है, जो जाहिर है असफल ही होना था। स्कूली शिक्षा यानी 10वीं श्रेणी के बाद लेखक के घर से भागकर बंबई जाने का दिलचस्प विवरण दिया है। इस समय तक लेखक को एक दिन में रानू, गुलशन नंदा जैसे लेखकों के 2-2 उपन्यास पढ़ने की आदत हो गई थी। इस बंबई यात्रा में इसे ही परिवार की लड़कियों से प्रेम प्रसंग का भी चित्रण है। बंबई से वापस मेरठ की यात्रा के आरंभ से इस आत्मकथा का अंत होता है, और इसमें लेखक ने धूल मिट्टी के परिवेश में बचपन और उगती जमाने की यादों को प्रस्तुत किया है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा का श्रेय मिलने से दलित साहित्यिक क्षेत्रों में इस आत्मकथा की चर्चा काफ़ी व्यापक रूप से हुई। प्रथम दलित आत्मकथा के रूप में इसका जोरदार स्वागत भी हुआ। साहित्यिक शैली के स्तर पर इस आत्मकथा में पत्रकारिता की शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है, लेकिन जहां इस आत्मकथा में विवरणात्मकता की प्रधानता है, वहीं पर संवेदना और मार्मिकता कम है। व्यक्तिगत प्रसंगों में भी घटनाओं का ही विवरण है, यहाँ तक कि प्रेम प्रसंगों में भी। बम्बई में रूबी सूजी प्रसंग में कुछ मार्मिकता का स्पर्श है, किंतु लेखक स्त्री प्रसंगों में कुछ अधिक ही रुचि लेता है। अपने अपने पिंजरे और जूठन के प्रकाशन में कुल 2 ही वर्ष का अंतर है, तथा दोनों ही आत्मकथाओं पर एक साथ ध्यान जाना भी स्वाभाविक है। दोनों आत्मकथाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जातिगत सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे को प्रस्तुत करती हैं। एक में मेरठ क्षेत्र है तो दूसरे में देहरादून क्षेत्र। जूठन में यदि दलितों में सर्वाधिक उत्पीड़ित चूहड़ा जाति के सामाजिक दशा का चित्रण हुआ है, तो अपने अपने पिंजरे में दलित वर्ग से चमार जाति की सामाजिक दशा का उद्घाटन हुआ है। चूहड़ा जाति के साथ समाज में सर्वाधिक अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है, चमार जाति की दशा अपेक्षाकृत थोड़ी सी बेहतर है। दोनों जातियों की आर्थिक दशा में यही अंतर देखा जा सकता है। शायद यही कारण है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा में उत्पीड़न का दंश इतना तीव्र है कि लेखक ने उसे अत्यधिक मार्मिकता और संवेदनशीलता से व्यक्तिगत यातनाओं के संदर्भ में अंकित किया है, जबकि अपने अपने पिंजरे में सामाजिक और व्यक्तिगत विवरण सपाट रूप में चित्रित किए गए हैं। अपने अपने पिंजरे में सामाजिक दशा के चित्रण में विस्तार अधिक है, जबकि जूठन में गहराई अधिक है। शैली के स्तर पर जूठन में कथात्मकता का स्पर्श है, जबकि अपने अपने पिंजरे में पत्रकारिता का स्पर्श है। कुल मिलाकर हिंदी में आत्मकथा लेखन के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अपने अपने पिंजरे और जूठन के प्रकाशन से इस विधा का हिंदी में परिपक्व आरंभ हुआ है, और आशा की जानी चाहिए कि इसका भविष्य में और भी प्रौढ़ रूप सामने आएगा।